اور اصلاح نفس کے حوالے سے مشائخ کا ایک قول ہم بار بار نقل کرتے ہیں کہ مشائخ نے فرمایا، من عرف نفسه عرف ربه، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ رب العزت کو پہچانا، یعنی جو اپنی باطنی امراض سے آگاہ ہو گیا اس نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا۔ اور باطنی امراض سے آگاہی مشکل کام ہے، باطنی امراض کو تسلیم کر لینا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ تو ان باطنی امراض میں سے گفتگو ہم نے کی دنیا کی محبت کے بارے میں، ان باطنی امراض میں سے ایک اور مرض تکبر پہ گفتگو کی، اور اب پچھلے چند دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے غصے پہ۔ یہ غصہ جو ہے یہ بھی باطنی امراض میں سے ایک مرض ہے۔ اور اس غصے کے حوالے سے ہم نے مچھلی مجالس میں یہ عرض کیا کہ یہ جو غصہ ہے یہ شہوت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور مشائخ نے اس کے کچھ دلائل پیش کیے اور وہ دلائل بھی آپ کے سامنے رکھے گئے۔ کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات عرض کی کہ جب غصے کی اصلاح ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، اور یہ صبر اللہ والوں کی بڑی نشانی ہے۔ کئی سارے مشائخ نے اللہ والوں کے درجات بیان کیے اور اس میں سے سب سے اونچا درجہ صبر کا رکھا، یعنی جو بڑے اللہ والے ہوں ان کے اندر صبر بھی زیادہ ہوگا تو آسانی سے ان کو غصہ نہیں آئے گا، اس لیے وہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جس کو غصہ آنے میں بہت دیر لگے۔ تو ہم نے کل کی مجلس میں یہ عرض کیا کہ خانقاہوں پہ جو چیز سکھائی جاتی ہے ان میں سے ایک بڑی چیز یہی کہ انسان کیسے یہ صبر حاصل کر لے۔ تو جس کو اپنے غصے پہ خوب کنٹرول، وہ اللہ والا ہے، اور اس کے لیے خانقاہوں میں مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس میں سے پہلے طریقے پہ ہم نے گفتگو کل کی مجلس میں کی کہ جو ذکر اذکار ہے، معمولات ہیں، ان کو پابندی سے کروایا جاتا ہے تاکہ اس ذکر کا اثر انسان کے باطنی امراض پہ آئے۔ کل کی مجلس میں ہم نے یہ حدیث بیان بھی کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر یہ دل کی شفا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو مشائخ کے بتائے ہوئے معمولات ہیں ان کو پابندی سے کرتے ہیں، انسان کو صبر نصیب ہوتا ہے۔ مشائخ کی صحبت میں ذکر و معمولات کی پابندی سے انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، اور یہ صبر اس لیے آ جاتا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، نیک ماحول میں رہتا ہے، یہ بات اور یہ سوچ اس کے وجود بن جاتی ہے کہ ہر عمل کا کرنے والا اللہ ہے۔ تو ہم اس کو مانتے تو ہیں، مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर। मगर इसका हर वक्त जो इस्तेहजार नहीं रहता, इसलिए हमें गुस्सा खूब आता है। तो जिक्र मामूलात की पाबंदी से, मशायख की सोहबत में आने जाने से इंसान को इस चीज का इस्तेहजार शुरू हो जाता है कि हर अमल जो है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। तो किसी ने ज्यादती भी कर दी, फिर इंसान उस पर नाराज नहीं होता है, बल्कि सोचता है कि ये अल्लाह की तरफ से था, बल्कि इससे भी एक कदम बढ़ के सोचता है कि मेरी ही किसी गलती की वजह से अल्लाह ने ये मामला किया। तो मशाय की एक मशहूर कौल भी है कि देश बर जाने दरवेश, ये जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी अगर नाराजगी गुस्सा है भी सही तो ज्यादा से ज्यादा अपने साथ ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए ये जिक्र मामूलात से इंसान को ये इस्तेजार जोरदार किस्म का हो जाता है कि फाइले हकीकी हर अमल का करने वाला जो है वो अल्लाह। इसलिए जरा गुस्सा ठंडा ही हो जाता है, इंसान यही सोचता है कि मेरी ही कोई गलती है, ये मामलात हो रहे हैं जो मुझे नापसंद है। और जब इस्लाह नहीं होती है, जिक्र तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं होती है, तो इंसान ये कहता है कि फलां की गलती है, इसकी वजह से मामला बनता है, मामला जो है वो गलत हो रहा है, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा करता है वो। तो बहरहाल अल्लाह वालों की निशानी यही है, उसे गुस्से पे कंट्रोल होगा, सब्र गहरे तरीके से आ जाएगा, इस चीज का इस्तेहजार हो जाएगा कि अल्लाह फा हकीकी है। तबलीग जमात में बड़ा बड़ा जबरदस्त एक सबक सिखाया जाता है कि हर चीज अल्लाह से होने का यकीन और मखलूक से कुछ भी नहीं होने का यकीन, कि यकीन ये पैदा करना है। तो ये यकीन जो है सिर्फ कहने से नहीं, बल्कि यकीन उसी को नसीब होगा जो जिक्र अस्कार पाबंदी से करेगा, अल्लाह वालों की मजालिस में आएगा, तो जहन की वो ट्रेनिंग होगी जहां वो इस चीज पे पहुंचेगा कि वाकयतन फाइले हकीकी का होने का इस्तेहजार रखेगा। मानते तो हम सब ये फाइल हकीकी वो ही है, मगर हर वक्त इसका ध्यान रहना कि वो ही है और हर अमल वो कर रहा है उस अमल के होते हुए, ये जिक्रो मामूलात करने वाले ही का खासा है। तो मशाय के नजदीक सबसे ज्यादा बड़ा अल्लाह वाला साहिब ही है जिसको ये सब्र नसीब है, जिसको ये वाकियतन दिल में ये बात पैदा हो जाए कि अल्लाह ही हर अमल के करने वाला। हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शाह अहमद सईद गंगोई रहमतुल्लाह। हजरत शाह अहमद सईद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के एक पोते थे, उनका नाम था हजरत शाह अबू सईद गंगोई। शाह अबू सईद की जो सारी तरबियत थी वो दादी ने की थी, दादी ने पाला था, यानी शाह हजरत शाह अहमद सईद की अहलिया ने, तो बड़े अल्लाह वालों की अहलिया थी वो, और पोते को बड़ी मोहब्बत से पाला और बहुत ही दीनी फिक्र भी उसकी की। पोता जब जवानी की उम्र को पहुंचा, जैसे 18-20 साल का जब नौजवान बड़ा हो गया, तो दादी क्योंकि अल्लाह वालों की अहलिया थी, शौक ही उनको यही था कि ये अल्लाह वाला बने, और बड़ी मोहब्बत से पाला भी था, तो उन्होंने पोते से कहा कि बेटा मेरा दिल चाहता है कि तुझे वो नेमत मिले जो तेरे दादा के पास। अब वो दादी से इतनी मोहब्बत करता था, उसने कहा ठीक है आप कहते हैं, तो वो नेमत ले लेते हैं, कहाँ से मिलती है। दादी ने कहा कि तेरे दादा जो थे ना उनके पास ही नेमत थी, मगर वो तो इस दुनिया से चले गए हैं, और उनके बहुत सारे खुलफा हैं, उनमें से एक हैं जिनके बड़ा फैज फैल रहा है, उनकी खानकाह पे जाओ तो वहां तुझे ये नेमत मिल जाए। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं चले जाता हूँ, मगर वहां फिर क्या करना होगा। दादी ने कहा बस जो वो बुजुर्ग बताएंगे वो करना होगा, मगर सोच ले, तो ये काम करने के लिए तैयार है तो जा वरना फिर ना जा। पोते ने बोली जोरदार जोर शोर से कहा कि अगर आपके दिल में ये है कि मुझे ये नेमत लेनी है तो मैं कुछ भी करके लेके आऊंगी, तो बड़े वादे करके। और ये पोता जो है ये चले गए हजरत की खिदमत में, उस वक्त जो हजरत के बड़े खलीफा थे उनको पैगाम भिजवाया गया जी आपके शेख के पोते आ रहे हैं। ये तो बड़े खुश हुए जी शेख के पोते तशरीफ ला रहे हैं, बड़ा इस्तकबाल किया, उनके लिए घोड़ा लेके और शहर से बाहर आ गए अपने मुरीदीन के साथ इस्तकबाल के लिए। फिर तो नौजवान 20-22 साल का जो भी नौजवान था उसको घोड़े पे बिठाया, और हजरत खुद जो हजारों लोगों को लेके चल के नुकेल पकड़ के घोड़े की और खुद लेके आए खानकाह। फिर खानकाह पे जिस मसनद पे खुद तशरीफ फरमा होते थे वहां नहीं बैठे खुद, मगर उस बच्चे को बिठाया और खुद नीचे तशरीफ फरमा हो गए कि जी शेख के पोते आए हैं। अदब इनका यही है। लोगों ने जब देखा कि जी हमारे शेख इतना ज्यादा उनकी अदब कर रहे हैं तो लोग भी शुरू हो गए, कोई पैर दबा रहा है तो कोई हदीये ला रहा है तो कोई हाथ चूम रहा है, तो बस ये माहौल बना। नौजवान ने कहा कि जी दादी ने यहाँ भिजवाया है, बड़ा आसान काम है, तो मसला ही कोई नहीं है, तो याशी चल रही है इधर। तीन दिन गुजर गए तो शेख ने पूछा कि जी आप तशरीफ लाए हैं तो अब किस मकसद से आए हैं, मत है जो हम कर दें, आप आए हमें तो बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने बताया कि जो मेरी दादी ने कहा कि आपको एक नेमत मिली है जो मेरे दादा के पास असल में थी, और दादी की ये ख्वाहिश है कि मुझे भी वो नेमत मिल जाए, तो इसलिए उन्होंने मुझे यहां भेजा और मैं वो नेमत लेने के लिए आया हूं। तो हजरत ने कहा कि नहीं वो नेमत तो थोड़ा मुश्किल काम है, आप नहीं ऐसे कर पाएंगे, कुछ इन दिया इस तरह से दिया। उन्होंने कहा हाँ मेरी दादी ने भी मुझे यही बताया था, मगर मैं उनसे वादा करके आया हूं कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। शेख ने कहा ठीक है अगर वादा करके आए हैं सबसे पहले तो इस मस्जिद से ही नीचे तशरीफ लाए, क्योंकि ये नेमत जो है इस मस्जिद से नहीं मिलती बल्कि नीचे उतर के मिलती है। तो नीचे आ गए, एंड गोल तो यही कि किसी तबीयत में तब्दीली आए, तबीयत में ये इस्तेहजार आए कि अल्लाह फाइले हकीकी है, और जब ये इस्तेहजार आता है तो इंसान में सब्र आ जाता है। तो मशाइख मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करते, कुछ लोगों को जिक्र अस्कार के जरिए से इस पॉइंट पे लेके जाते हैं जिसकी तबीयत उस तरफ बनती है, और कुछ लोगों की तबीयत जिक्र अस्कार के नहीं तो उनको नसीहत से भी समझाया जाता है, और कुछ लोगों को डांट डपट करके और कुछ लोगों पे खिदमत का बोझ डाला जाता है, उनको झुकाया जाता है। तो हजरत ने महसूस किया कि इसको जो तरबियत करनी है वो खिदमत इसके सर पे डालनी है, ऐसी खिदमत जो कि नीचे दर्जे की हो, क्योंकि तबीयत में जिक्र अस्कार वाली तबीयत थी नहीं। तो हजरत ने कहा कि आपने हमारे जो स्तबल है कुत्तों का, उसकी रखवाली आपने करी है, कुत्तों का खाना पीना, उनकी सफाई, ये सब कुछ आपके जिम्मे, और उसी के करीब आपके रिहाइश की जगह भी बना देंगे, वहीं पे आराम करना है आप। अब मसनद पे बैठकर और खूब लोगों की खिदमतें वगैरह वो सब खत्म, और कुत्तों की खिदमत शुरू। परेशान भी हुए, ये क्या, ये काम तो कभी नहीं किया था। तकलीफ भी बड़ी हुई, मगर बार बार दादी याद आ जाती कि दादी से वादा करके आया हूं कि जो हजरत फरमाएंगे वो करना है। जो तवज्जो खानकाह पे हजरत के सारे मुरीदीन दे रहे थे, जो हजरत दे रहे थे, वो भी खत्म। अल्लाह अकबर, कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। एक आम सा छोटा सा नौकर जैसे होता है वैसे बना दिया। तो तबीयत में बेचैनी जरूर थी। तो गो के हजरत तवज्जो इस तरह से कर नहीं रहे थे, मगर फिक्र बहुत ज्यादा थी कि शेख के पोते हैं, एक मकसद के लिए आए हैं, ये मकसद हासिल करना है। तो चंद महीने गुजरे, तो इस उम्मीद पर कि कुछ बेहतरी आई होगी, चेक करना चाहा कि जी इस्लाह कहाँ तक पहुंची। इस्लाह तो इसी बात की थी मेरे, कितना ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत को फाइल हकीकी समझ रहे हैं, कितना ज्यादा तबीयत में सब्र और ठहराव आया। तो खानकाह पे काम करने वाली एक, जैसे मासियां होती हैं सफाई करने वाली, तो एक औरत थी, हजरत ने उसको कहा कि सारा कचरा जब जमा कर लो, इसके करीब से गुजरना। उसके करीब से गुजरते हुए तुमने ऐसे करना है कि जैसे तुमको ठोकर लगी, और सारा कचरा उसके करीब फेंक देना, सारी बू उसको आए। तो औरत इसी तरह से थी, बूढ़ी औरत ऐसे गई और उसने ऐसे एक्ट किया कि जैसे वो उसको ठोकर लगी है, गिरने वाली है, और सारा कचरा जो था उस नौजवान के बिल्कुल करीब फेंक दिया। तो बू भी थी, गंदगी थी। तो जब फेंका, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा देख के नहीं चलती है, तो शेख की खानकाह, इसलिए तुझे कुछ नहीं कह रहा, गंगो होता ना फिर तुझे बताता। अम्मा ने माफी मांग ली कि जी माफ कर दे, गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया। अपना सारा कचरा समेटा। अगर ने पूछा हमें क्या हुआ, अम्मा ने कहा कि हजरत मैंने तो उसके करीब फेंका, उसने आगे से जवाब दिया कि अभी तो तुझे कुछ नहीं कह रहा, शेख की खानकाह है, गंगो होता ना फिर तुझे बताता ये तुमने हरकत की है। शेख ने कहा अभी तो बहुत काम बाकी है। शेख ने कहा इसको ऐसे रहने दो, फिर लंबे अरसे तक बस कुत्तों की खिदमत और स्तबल की खिदमत, और बस इसी में कोई पूछता भी नहीं था। शेख बस दुआएं करते थे, उस पर तवज्जो करते थे, उसकी फिक्र करते थे, मगर जाहिरन उसको नहीं बताते थे कि जी तेरी फिक्र है, वरना फिर वो महसूस करेगा कि मैं कोई बड़ी चीज हूं। काफी अरसे बाद फिर अम्मा से कहा कि अब फिर सफाई करते हुए जो है ना, जाके फिर उसी तरह इसके करीब फेंक देना कचरा। इसी तरह से गई, फिर इसी तरह से कचरा उसके करीब फेंका। अब जो फेंका तो उसने गुस्से से देखा तो सही, मगर कुछ कहा नहीं। अम्मा ने अपना सारा कचरा समेट लिया। हजरत ने पूछा कि भाई क्या बना, अम्मा ने कहा कि इस मरतबा उसने कुछ कहा तो नहीं, मगर बड़े गुस्से से मुझे देख रहा था, नाराज जरूर हुआ। फरमाया भी कुछ तो बेहतरी आई है पहले के मुकाबले। مگر حضرت نے فرمایا اب بھی بڑا کام ہے. پھر ایک لمبے کئی مہینے تک پھر چھوڑ دیا. بہت عرصے تک چھوڑا رکھا. بہت عرصے بعد پھر اس اما سے کہا کہ اب جاؤ, اب بھی سارا کچرا جو ہے وہ اس کے قریب نہ ڈالنا, اب اس کے اوپر ہی ڈال دینا, یعنی اس کے کپڑے بھی خراب ہو جائیں, پورا ناپاک بھی ہو جائے, گندا ہو جائے. اس مرتبہ اما نے جا کے سارے اس طرح سے ٹھوکر لگی کہ سارا کچرا اس کے اوپر, مگر اس مرتبہ اماں بھی حیران ہو گئی کہ بجائے اس کے کہ وہ اماں پہ ناراض ہوتا, اس کو اماں پہ ترس آیا کہ اماں پھسلی ہے. سب سے پہلے تو کہا کہ اماں تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے کہا نہیں, بچ گئی. پھر اس نے کہا اچھا تو کھڑی ہو جائیے, میں سمیٹ دیتا ہوں. تو سارا کچرا خود سمیٹ کے اور کچرے میں ڈال کے اور دیا کہ اچھا میں لے جاتا ہوں, میں پھینک دیتا ہوں اس کو, کہاں پھینکے گی بوڑھی عورت. اب اما گئی تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی اب کیا بنا؟ لگا حضرت اب تبدیلی ہے, اب تو مجھ سے ناراض نہیں ہوا, میرے اوپر بےچارا ترس کھا رہا تھا کہ بوڑھی اما گر گئی, کچرا بھی میرا سارا اس نے اٹھایا اور جا کے پھینک بھی اسی نے دیا. حضرت نے فرمایا اب کام ہو گیا, جو وہ چیز حاصل کرنے آیا تھا وہ چیز اسے نصیب ہو گئی ہے. تو مشائخ کے نزدیک اللہ والا وہ ہے, ذکر کی, خدمت کی, تربیت کا اصل آؤٹ کم یہی ہے کہ سالک جو ہے وہ اللہ کو فاعل حقیقی مانے گا, اور جب فاعل حقیقی اللہ کو مانے گا تو پھر دنیا کی پریشانیوں پہ اس کو صبر آ جائے گا, غصہ جلدی نہیں آئے گا. اور یہ اللہ والوں کی بڑی نشانی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.